अयोध्या कांड दोहा संख्या 272 से। दोहा। सुनत जनक आगवन सब हर्षउ अवध समाज, रघुनंदन ही सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराज। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कह के ई काहि कहे कहि दूषणु देई, असमन आनी मुदित नर नारी भयउ बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल कह के ई मन ही मन ग्लानी से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सो प्रात नहान लाग सबको, करी मज्जन पूजहि नर नारी गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इसी तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी की, गौरी जी की, महादेव जी की और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी बिन वही अंजलि अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबस बसऊ फिर सहित समाजा भरत ही राम करहु जुब राजा, यही सुख सुधा सींच सब काहू देव देहु जग जीवन लाहु। फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा। गुरु समाज भायन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मारिय माग सबको। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब लोग यही मांगते हैं। सुनि स्नेह मैं पुरजन बानी निंद ही जोग बिरति मुनि ज्ञानी, यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन राम ही कर ही प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपनी योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी लह ही दरसु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन मान ही सकल सराहत कृपा निधान ही। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिका इहते रघुवर बानी पालत नीति प्रीति पहचानी, शील सकोच सिंधु रघुराई सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव वाले हैं। कहत राम गुनगन अनुरागे सब निज भाग सराहन लागे, हम संपुण्य पुंज जग थोरे जिन्हें राम जानत करिमोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं या मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा। प्रेम मगनते ही समय सब सुनि आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठऊ रविकुल कमल दिनेशु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरु पुरजन साथा आगे गवनु किन्न रघुनाथा, गिरिवरु दीख जनकपति जब ही कर प्रणाम रथ त्याग तब ही। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहु पथ श्रमलेशु कलेशु नकाहु, मन तह जह रघुवर बै देही बिनु मंतन दुख सुख सुधले के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन कुचले एहि भांति सहित समाज प्रेम मतिमाति। आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनके बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन ऋषिन्ह प्रणाम किन्ह रघुनंदन। भाइन सहित राम मिल राजहि चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्या वासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। दोहा। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथ सेन मनह करुणा सरित लिए जाहे रघुनाथ। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूप में पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना या अर्थात समाज मानो करुणा कर्ण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे बचन ससोसक ससोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तुरावती धारा भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा सकहि न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी का की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते, किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे थके बिलो की पथिक हारे। आश्रम उदध मिली जब जाई मन उठे अम्बुध अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खौल उठा। शोक विकल दो राज समाजा रहा न ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही रो बही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष बोलहि बाम विध किन्हों कहा। सुरसिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को उजोतरी सकय सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। सोरठा। किए अमित उपदेश जह तह लोगन मुनिवरन धीरज धरिय नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। तहि कि मोह ममता निअराई यह सिय राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है अर्थात आनंदित कर देती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग भेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में तीन प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस रहता है साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल जानु मुनि बहुविधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया, तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी सो बासव बीतेउ बिनु बारी पशु खग मृगन न किन्ह आहारु प्रिय परिजन कर कौन बिचारु। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया, तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दोहा दो समाज निमिराजु रघुराजु नहा निपात बैठे सब बट बिटपतर मन मली निकृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब्बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महेश्वर दशरथपुर वासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस वंश गुरु जनक पुरोधा जिन जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहन उपदेश अनेका सहित धर्म नय बिरति विवेका कौशिक कही कही कथा पुरानी समझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे ओ नाथ काली जल बिनु सब रहयो मुनि कह उचित कहत रघुराई गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, ढाई पहर दिन आज ही बीत गया। ऋषि रुख लखी कह तेरहुत राजू यहाँ उचित नहीं असन अनाजु कहा भूप भल सब ही सुहाना पाए रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा तेही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेक प्रकार के फल बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। कामद भे गिरी राम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सही भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा था। बेली बिटप सब सफल सफूला बोलत खग मृग अली अनुकूला तही अवसर बन अधिक उछाहु त्रिविद समीर सुखद सब काहु। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाई नबरनी मनोहर तानी जनु महि करति जनक पहुनाई तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक पुनि आय सुपाई देख देख तरुबर अनुरागे जह तह पुरजन उतरन लागे दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर कर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेक प्रकार के पत्ते फल फूल और कंद दोहा। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरी भरी भार, पूजी पीतर सुर अतिथि, गुरु लगे करण फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। यही विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी, दुह समाज असिरुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीता राम संग बन वासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरि लखन राम बय देही, जही घर भाव बाम विधते ही। श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयो होई जब सब ही, राम समीप बसी बंतव ही, मंदाकिनी मज्जनु तिहु काला, राम दरसुमुद मंगल माला। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु राम गिरि बंताप स्थल, असनु अमिय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होइन जनि यही जाता। श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। दोहा। यही सुख जोग न लोग सब कहें कहाँ असभाग, सहज सुभाए समाज दुहु राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करहीं, बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं, सीय मात तेहि समय पठाई, दासी देख सु अवसरुआई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सनमानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सीलु सनेहु सकल दुहु ओरा, द्रव देख सुनि कुलिस कठोरा, पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीत किसी मूरति, जनु करुणा बहु वेश बिसूरति, सिय मातु कह विधि बुधि बाकी, जो पै फेनु फोर पविटाकी। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके विसुर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं उन पर विपत्ति ढहा रहा है। दोहा। सुनिय सुधा देखियहीं, गरल सब करतूति कराल, जह तह काक उलूक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृजि पालई हरई बहोरी, बाल केली संविधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगीं, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या कह दो सुन काहु, करम विवस दुख सुख क्षति लाहु, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सही फलों को देने वाला है। ईस रजाई शीस सब ही के उत्पत्ति थिति लय बिषहु अमी के देवी मोह बस सोचिय बादी विधि प्रपंचु अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थिति और लय तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह वश सोच कर नाव्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपत जियव मरव उर आनी सोचिय सखी लखि निज हित हानि सीय मातु कह सत्य सुबानी सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न सोचेंगी। दोहा। लखनु राम उसी अजाहु बन भल परिणाम न पोचु गह बर ही कह कौशिला मोहि भरत कर सोचु। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं, मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद अशीस तुम्हारी सुत सुत वधु देव सरी बारी राम सपथ मैं किन्हीं न काऊ सो करी कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत सील गुण विनय बढ़ाई भायप भगति भरोस भलाई कहत सारद हो करमत नीचे सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है, सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानउ सदा भरत कुल दीपा बार बार मोहि कहउ महीपा कसे कनकु मनि पारिखि पाए पुरुष परिखहि समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ, महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर और उसके स्वभाव से ही हो जाती है। अनुचित आज कहव अस मोरा शोक स्नेह सयान पथोरा सुनि सुर सरी संपावनी बानी भई स्नेह बिकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है, लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। दोहा। कौशल्या कह धीर धरी सुनो देवी मिथिलेशि को विवेक निधि बल्लभ तुम ही सकई उपदेशि। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई अपनी भांति कहब समझाई रखी यही लखन भरत गव नहीं बन जो यह मत मानय महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भल जतन करव सुबिचारी मोरे सोचु भरत कर भारी गूढ़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें, मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाव सुनि सरल सुबानी सब भई मगन करुण रसरानी नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथकी लखी रहउ तब धरि धीर सुमित्रा कहउ देवी दंड जुग जामिनी बीती राम मातु सुनि उठी सब प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया अर्थात निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। दोहा, बेगि पाओ धारी अथलहि, कह सनेह सति भाय, हम रह तो अब इस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो ईश्वर की गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि सनेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता, देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घर नि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपको ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहीं, अग्नि धूम गिर सिर तिनु धरहीं, सेवकु राम करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहाय कि दिन कर सो है, राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हि राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसी हैं अपने अपने थल, यह सब जाग बलिक कहे राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ नहीं हो सकता। दोहा, अस कहि पग परि प्रेम अति, सियहित बिनय सुनाय, सिय समेत सिय मात तब चलि सुआय सुपाय। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली ब देही, जो जहि जोगु भांति तेहि सितेहि, तापस बेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थल थल हिसिय देखी आई, लिन्ह लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु, सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम सिसु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर सनेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीव मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को ही विकल कर दिया। दोहा, सिय पितु मातु सनेह बस, विकल न सकी संभारि, धरनि सुता धीरज धरउ, समय उस धर्म विचारि। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं मानो संभाल न सकें, परंतु अब परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोषु बिसेखी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्ज्वल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सरी कीरति सरी तोरी, गवनु किन्न विधि अंड करोरी, गंग अवनिथल तिनी बड़े रे, यही के साधु समाज घने रे। तेरी कीर्तिरूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना लिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुमानी, सीय सकुच मन मन हो समानी। पुनि पितु मातुलिन्ह उर लाई, सिख आसिख हित दिन्ह सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर से हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सी ये सकुचि मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनाय राऊ, हृदय सराहत सील सुभायो। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। दोहा, बार बार मिली भेंट सिय विदा किन्न सनमान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत अब व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा ससिमारु। मूदे सजल नयन पुल केतन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीत और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोरी भरत मही माही, कह काल छलि छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति सिउ सारद, कवि कोविद बुद्ध बुद्धि विशारद। वह धर्म राजनीत और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूति, धर्म शील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुरसई रुचि निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करणी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। दोहा, निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरतु भरत समझान, कहे उसमेरु के शेर सम कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गमुधरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकहीं बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाउ, तिय जिय की रुचि लखि कहराउ। बहु रही लखनु भरतु बन जाहीं, सब कर फल सब के मन माहीं। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीत जाय नहीं तर की। भरतु अवधि स्नेह ममता की, जदपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा ये भरत जी की प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हु मन हु निहारे साधन सिद्ध राम पग नेहु मोहि लखी परत भरत मते हु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में ही मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। दोहा। भोर हूँ भरत न पेली है मन सहु राम रजाई करी यन सोचु स्नेह बस कहे उभूप बिलखाई। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भजन गुनगन सब प्रीति निसी दंपत ही पलक संबीति राज समाज प्रात जुग जागे नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाए गुर नहीं रघुराई बंद चरण बोले रुख पाई नाथ भरतपुर जन्म हतारी शोक बिकल बन बास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेशु उचित हो इसोई कीजिय नाथा हित सब ही कर रौ रे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ मुनि पुलके लखिशील सुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। दोहा। प्राण प्राण के जीव के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात गृह जिन्हें तिन्हें विधि बाम। हे राम तुम प्राणों के ही प्राण आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जो सुख करम धर्म जरि जारू जहन राम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जहन ही राम प्रेम पर धानु। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञात है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानो जिय जो जेह के ही राउर आय सुसिर सब ही के विदित कृपाल गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम ही धारिय पाऊ भय स्नेह शिथिल मुनिराऊ करि प्रणाम तव राम सिधाये ऋषि धर धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम बचन गुरु नृपहि सुनाए सील स्नेह सुभाए सुहाए महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित सी हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। दोहा। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नरपाल तुम बिनु असमंजस समन को समरथ यही काल। हे राजन तुम ज्ञान के भंडार सुजान पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे लखी गति ज्ञान विराग विरागे शिथिल स्नेह गुणत मन माही आये यहाँ किन्ह भल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को ही वैराग्य हो गया अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम हे राय कहो बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बंत बन ही पठाई, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा ही मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि महेश्वर सुनि देखी, भय प्रेम बस विकल विसेखी। समो समझ धर धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भय लिन्हे, अवसर सरित सुआसन दिन्हे। तात भरत करते रहुति राऊ, तुम्हें विदित रघुवीर सुभाऊ। भरत जी ने आकर उनसे उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। दोहा राम सत्य वर धर्म रत, सब कर सीलु सनेहु, संकट सहत सकोच बस कहिए जो आय सुदेहु। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्म परायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। हम तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए।